हरे 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 राम हरे राम 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 तत्वानि अनेन बिंबिष्यामि, अनेन तत्वानि बिंबिष्यामि, इसी शरीर से मैं तत्व को ग्रहण करता हूँ। भगवान का नाम सत्य है तो उसको मैं लेता हूँ, उनका रूप देखता हूँ, और भी कई तरह से भगवत अनुभव इसी शरीर से करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा है। इससे मैं ज्ञान लिया हूँ और इससे वैराग्य सीखा हूँ। तथापि फिर भी एवं अति उपकारित्वे अपि, यद्यपि इस देह ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, फिर भी देहे न इवास्था कर्तव्यमित्य, फिर भी इस पर विश्वास मेरा नहीं है। इतना बड़ा उपकारी है लेकिन इसमें मेरी आस्था नहीं है। आस्था का अर्थ होता है जिस विचार में, जिसमें मनुष्य बहुत अच्छी तरह से अस्थित रहे। इतना बड़ा उपकारी है ये मेरा गुरु, लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूँ, इससे मेरा कोई मेल नहीं है। तथापि ठीक है, ये इसने हमको वैराग्य दिया है, इससे ज्ञान सीखा हूँ, लेकिन इस पर विश्वास नहीं है कि कब गिर जाएगा, क्या होगा। और कुछ तो निश्चित रूप से मैं इसको जानता हूँ कि पारक्यम कुछ भी है, अंत में यह कुत्ता और सियार का भोजन है। इति अवसिता, ये तो मैं देख करके कह रहा हूँ, ये निश्चित है। इसलिए विचरामि असंग, मैं असंग होकर के शरीर से अनासक्त होकर के घूमता। दूसरे लोग शरीर में आसक्त होकर के घूमते हैं, कहीं मान लीजिए जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं, देह के लिए जा रहे हैं। शरीर चलाने के लिए पेट सबसे मुख्य अंग है, तो लोग कहते भी हैं पेट के लिए करना पड़ता है। तो देह के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब देह में आसक्त है। पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं देह में नहीं हूँ, असंग। तो हमें ये सीखना चाहिए कि देह में न रहे। एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कहा था एक बार, अकस्मात कहा कि महाराज जी सबसे पहले तो ये सीखना है कि देह से बाहर कैसे रहा जाता है। देह से बाहर रहना सीखना चाहिए ना। देह में रहने का मतलब है कि देह के लिए काम करना है, करना रिमोट पूरा खड़ा कीजिए पीछे, हाँ चलिए खड़ा हुई। तो विचराम या संग, मैं देह के लिए नहीं घूमता हूँ। हम लोग भी भागवत में आए हैं तो आश्रम देह के लिए नहीं आए, आत्मा के लिए आए हैं। देह को ढो रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ देह को ले जा रहे हैं, देह के अनुसार नहीं जा रहे। देह की मांग को पूरा करने के लिए जाना, देह के सुख के लिए जाना, यह है देह में आसक्त होकर के जाना। कहीं गए अगर देह का सुख नहीं मिला, आत्मा का कुछ भी सुख हो, तो मूर्ख लोग वहां से भाग जाते हैं, यह नहीं ठीक। यह असुविधा है, वो है, ये है, ये है, वो है, ऐसे है, ऐसे तो भाग जाते। लेकिन जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, देह की असुविधा पर ध्यान नहीं देते, वो आत्मा का हित करते। तो इस प्रकार से मैं इस देह से अलग रह रहा हूं। पारक्यम स्वश्रृगालादि श्रृगालादि भक्ष्यम इति निश्चितवान। यह बात बारंबार विचारणीय है कि हमारा देह एक दिन कुत्ता और सियार या गिद्ध का भोजन बनेगा, अथवा जमीन के अंदर जाएगा या आग की लपटों में जल जाएगा। अपने शरीर के विषय में हमें अध्ययन रखना है, सर्वदा बारंबार विचार करते रहना चाहिए कि शरीर रहेगा नहीं, चला जाएगा। अच्छा वो भी कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। इसलिए संसार में क्या आस्था करेंगे, शरीर में ही आस्था नहीं करनी है। इसको ज्ञान कहते हैं। आदमी कहता है परिवार की आसक्ति छोड़ो, परिवार की आसक्ति छोड़ो। अरे परिवार की आसक्ति तो छोड़ने पहले तो देह की छोड़नी है, नहीं तो परिवार छोड़ने के बाद भी आदमी देह पोसने लगता है। बहुत ऐसे लोग तथाकथित साधु संत हैं जो अपना घर छोड़ दिए हैं, लेकिन मंदिर में मठ में रहकर देह को खूब पोस रहे। उनका पहनाव देखिए तो मोजा उतरता ही नहीं है, पैसे संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़ दिए, लेकिन अब मोजा चढ़ा हुआ है। हम पहले यही जानते थे कि केवल दूल्हा मोजा पहनता है, वास्तव में चूंकि हम लोग गरीब गांव के हैं तो पहले लोग इस तरह से मोजा नहीं पहनते थे। तो जिस लड़के का विवाह होता था उस दिन वो मोजा और खूब बढ़िया जूता पहनकर जाते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्कूल जाते समय या बाजार जाते समय या कहीं भी मोजा पहनने का शौक हो गया है। भगवान के मंदिर में भी मोजा पहन पहन करके जाते, जबकि मोजा पहनना आधा जूता पहनने के समान है। बहुत दुर्गंध निकलती है गर्मी के दिन में। तो खैर गृहस्थ मोजा पहने चाहे जितना जीट जाट से रहे, अब साधु को इतना संवारने की क्या आवश्यकता है। परंतु इस समय गृहस्थों से ज्यादा साधु ही अपने को संवार रहे। नहाने के बाद और तिलक आदि करने के पहले सेंट फेंट लगाते हैं, हम देख करके दंग हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है भैया, वाह कलयुग वाह कमाल कर दिया। जो गृहस्थ लोग नहीं कर रहे हैं उससे बढ़ करके त्यागी लोग कर रहे हैं। लेकिन त्याग का अर्थ है कि जैसे आदमी और चीज छोड़ दिया है तो देह से भी आस्था छोड़ देनी चाहिए। देह को थोड़ा सा अन्न दे दिया, कपड़ा ओढ़ा दिया, शीत से घाम से बच गया कि अब इसमें मोजा और अलंकार धारण करेगा। कई मैं सन्यासियों को देखा सिकरी लगाए हुए, सोना की सिकरी। वास्तव में आश्चर्य अद्भुत कली का नाटक। कलयुग लगता है एकदम जवान हो गया है, चरम सीमा पर है, तनिक भी लज्जा नहीं आती है सोना धारण करने, अंगूठी पहनने। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं तो इससे बिल्कुल असंग घूमता, शरीर में हूं लेकिन शरीर से बिल्कुल परे हूं। तो सबका एक कर्तव्य है देखना चाहिए कि शरीर पारक्य है, ये रहेगा नहीं, अंत में इसको नष्ट होना है, और है बड़ा फायदा वाली वस्तु, बड़ी उपयोगी वस्तु है देह, इसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। तो जब इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी तो जितना जल्दी हो करनी चाहिए ना, क्योंकि गिरने वाला है, कुकुर सियार के पेट में जाने वाला है। तो जब तक है तब तक तो प्यार का भोजन है, एक प्यार के भोजन को खूब तेल चोवा चंदन लगाने की क्या जरूरत है। ये तो उस तरह से है जैसे हम लोग दाल छौंक करके टेस्ट बढ़ाते हैं, छौंकते हैं या हलवा में घी डालते हैं, तो इस तरह से कुकुर सियार के इस भोजन में खूब श्रृंगार करना, छौंक छौंक करके इसको टेस्ट बनाना, खूब तेल मालिश चलती है। अभी कुकुर सियार के भोजन में तेल लगने लगता है तो एक एक दो दो घंटा तक लगता है। अब कोई कुछ भी करे लेकिन वास्तव में कुत्ते सियार कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक बा खूब संवार ले, लेकिन जहां दिन गिरी ता दिन हमारे पेट में आए, कुछ भी नाम हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री नाम हो जाए इस भोजन का, चाहे राष्ट्रपति नाम हो जाए, कुछ भी नाम बीच में धारण करेगा लेकिन अंत में स्वश्रृगाल भक्ष्य अंत में तो उनका भोजन होना ही है, और नहीं तो अग्नि का, और नहीं तो पृथ्वी में कीड़ा बनना है। तीन गति में से एक गति होगी देह की, इसलिए देह से परे रहना है। इतना बड़ा उपकारी है, ज्ञान वैराग्य देने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे गुरु से अनासक्त ही रहना ठीक है। इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आस्था नहीं करनी चाहिए शरीर में। प्रायः लोग इसी आस्था में रहते हैं कि अरे हाँ भी हम बहुत दिन जिएंगे। किसी के साथ बात लगी हुई है, किसी को विश्वास नहीं है कि नहीं मैं जल्दी मर जाऊंगा, नहीं अभी नहीं मरूंगा। मरने के लिए लोग मर रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम अभी नहीं मरे। जो लोग 50 पार कर गए हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं अभी तो 50 वर्ष और जिए, इस तरह से सोचा करते हैं। परंतु ज्ञानी आदमी को चाहिए कुछ देह में आस्था न करे, और देह से उत्पन्न वस्तुओं में क्या आस्था की जा सकती है। तो ये ज्ञान और वैराग्य को सीखने में देह मेरा 25वां और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन मैं इसमें कोई अटैच्ड नहीं। अच्छा इतना ही नहीं, जो सतत दुख देता है शरीर, उसको आगे बता रहे हैं किस तरह शरीर सतत दुख देता है। वास्तव में कोई न कोई रोग शरीर में लगा रहता है, कभी तो सिर दर्द कर रहा है, तो कभी दांत दर्द कर रहा है, तो कभी कहीं दुख है, तो तब तक भूख लग गई, तो भूख की ज्वाला, फिर कोई अपमान करता है उसका दुख, ये दुख, और बुढ़ापा में शरीर और अधिक दुखदायी हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर का केवल उत्तर फल है, बाद में क्या लाभ है इसका, तो दुख आरती, तो उसी को बता रहे हैं आगे। सतत आरती दरकता प्रपंचयति जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहात वर्गान पुष्णात्जत प्रिय चिकित्सया वितन्वन स्वान्ते सकृच्छ्रमवरुद्ध धनः सदेहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्ष धर्मा। केवल यह शरीर दुख ही नहीं देता है, बल्कि आगे भी दुख देने की व्यवस्था करके जाता है। जस्य देहस्य प्रिय चिकित्सया, जत प्रिय चिकित्सया, जिस देह का प्रिय करने की इच्छा से, भोग संपादन की इच्छा से मनुष्य स्त्री स्वीकार करता है। सबसे पहले कोई विवाह क्यों करता है, क्यों स्त्री संग्रह करता है, देह को सुख देने के लिए। वो तो भोजन बनाएगी, सेवा करेगी, चरण दबाएगी और भी बहुत तरह से सुख देगी, इसके लिए पहले स्वीकार करता है जाया। आत्मा के लिए जाया जरूरी नहीं है, देह के को आराम देने के लिए, देह को सुख देने के लिए। जत प्रिय चिकित्सया, जस देहस्य प्रिय चिकित्सया, प्रिय करने की इच्छा से, अर्थात भोग संपादन की इच्छा से स्त्री स्वीकार करता है, और स्त्री के बाद वो चाहने लगता है कि हमको पुत्र होना चाहिए। अपने देह के लिए ही ये सब चाहता है। जायात्मज आत्मज, जब जाया आती है, मतलब पत्नी आती है, तो इसके बाद आत्मज पुत्र। अच्छा स्त्री हो गए, पुत्र हो गए, तब चाहिए अर्थ, पैसा चाहिए, पैसा कमाने के फेर में पड़ता है, या खेत खरीदने के फेर में पड़ता है, जैसे पैसा। पशु, इसके बाद पशु चाहिए दूध खाने के लिए और कुछ ऊर्जा शक्ति, ये तीन काम के लिए पशु की जरूरत होती है। एक तो गाय भैंस चाहिए दूध खाने के लिए, और हाथी घोड़ा आदि चाहिए सवारी करने के लिए, और बैल ऊंट आदि चाहिए खेत जोतने के लिए। इस तरह से यह क्यों इतना झमेल इकट्ठा करता है, जाए के अकेल व झमेल कौन काम के गाते हैं लोग, ये सब क्यों करता है मनुष्य, केवल देह को सुखी करने के लिए, देह के लिए करता है। तो देह के लिए पत्नी, पुत्र, धन और पशु, कोई अपने घर में पशु रखा है क्या? पशु के लिए ना, अपने लिए रखा है कि नहीं? अपने लिए रखा है फिर भी पशुओं की सेवा नहीं कर पाता है। टाइम पर कुछ लोग पानी तक नहीं पिलाते हैं, कसाई जो अपने लिए रखे हैं, बकरी से लेकर के हाथी तक जो भी पशु है आदमी अपने लिए रखा है, पशु के हित के लिए नहीं रखा है। ऐसा नहीं चलो मन में आ गया कि मेला लगा है जरा दो चार पशु खरीद कर हम भी पालन करें, क्या बैठे बैठे करेंगे। इसके लिए कोई पशु नहीं लाता है, अपने देह के लिए लाता है। चाहे हाथी घोड़ा वो अपने बस में करके चढ़ता है, देह से चलना नहीं चाहता है, चढ़कर चलना चाहता है। चाहे माल ढोता है, भृत्य और नौकर चाकर रखता है, भृत्य रखता है, दास दासी रखता है अपने लिए, और फिर गृह बहुत तरह से घर बनाता है, ऐसा रूम बनाओ, ये करो ये करो, किसके लिए? देह के लिए, देह के लिए घर बनाता है। अच्छा, फिर आप्त, फिर संबंधी मिलते हैं। आप्त कहते हैं जो बाद में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, तो आप्त का अर्थ है समधि या और भी जो भी संबंध, विवाह करने के बाद जो संबंधी प्राप्त होते हैं उनको आप्त कहते हैं। एक जगह विवाह होने पर तब समधि साले बहनोई क्या क्या मिल जाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा साढ़ू का नाटक चल रहा है, तो सबसे बरियार भाई ऐसे कि स्त्री के कारण बाबू, एक घर में विवाह हो गया है दो आदमी का, तो उसको सोढ़वा संस्कृत में कहते हैं, साढ़ू उसी को कहते हैं, साढ़ू मतलब एक साथ एक घर में विवाह हुआ है, तो साढ़ू से इतना प्रेम हो गया है कि अपने सहोदर से उतना प्रेम नहीं है। सहोदर भाई से तो हो सकता है साल में एक दो बार बात भी ना हो, या हो सकता है मुकदमा चल रहा है, और साढ़ू से रोज समझा, रोज बात, और बड़े गर्व के साथ इस समय लोग बोलते हो तो हमारे साढ़ू लगे, साढ़ू भाई हूँ। स्त्री में इतनी आसक्ति है कि उसके चलते साढ़ू भाई का नाता इतना जोर पकड़ा है। आप तो बरगान इस तरह से संबंधी और जो कुछ है इन सबको पुष्णाती, इन सबको क्यों पोषता है, क्यों स्त्री रखता है, क्यों पुत्र उत्पन्न करता है, पैसा कमाना, पशु रखना, नौकर रखना, घर द्वार बनाना, हित गण इकट्ठा करना, ये सब किस लिए? जत प्रिय चिकित्सया, देह के प्रिय, देह का प्रिय करने के लिए। लेकिन यह देह ऐसा बदमाश है, इसके लिए बेचारा जीव सब जुटाता है देह के लिए, लेकिन स्वांते सकृच मौर धन सदेह सृष्टवास बीज मवसीदति वृक्ष धर्म, लेकिन अंते अवसीदति नश्यति। इतना देह के लिए किया जाता है लेकिन देह इतना कृतघ्न है कि अंत में ये नष्ट हो जाता है, ये साथ नहीं देगा। वास्तव में जनरली आप विचार करके देखिए तो आत्मा देह नहीं छोड़ना चाहता है, वो देह के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये देह बिना उसको छोड़े रहेगा नहीं, ये गिर जाएगा। जो ज्ञानी होते हैं, परम भक्त होते हैं भगवान के, वे लोग तो देह छोड़कर चले जाते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति। लेकिन जनरल लोग जो हैं उनको देह ही छोड़कर गिर जाता है, वे लोग देह नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं कि देह हमको छोड़ने की हालत में है तो लेकर भागते हैं अस्पताल इधर उधर कि भैया इसी देह में रहे। तो आत्मा जो उज्जवल है, चिन्मय है, वो इस अधम इस मृतक देह में रहना चाहता है, फिर भी आत्मा को छोड़कर गिर जाता है, देह साथ नहीं देगा। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कम से कम इस देह को इस समय अपने बस में रखिए कि कथा सुने, इसके बस में होकर के सो मत जाइए। सुन रहे हैं ना कथा? कोई भी आत्मा देह से निकलना चाहता है न? देह 95 वर्ष का जलपा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, फिर उसी में रहना चाहता है। लाख दुख हो रहा है लेकिन आत्मा ऐसा फंसा हुआ है, उसे तो नहीं ठीक है, इसी देह में रहे, इसी देह में रहे। और जहाँ 100 वर्ष पार किया कि आत्मा को आनंद होता है, सोचता हाँ 100 वर्ष इसी देह में रहा, और उस वक्त तुरंत अपनी शताब्दी मनाना चालू करता है। कितने लोग बड़े गर्वित होते हैं कि उनके जीवन काल में उनकी शताब्दी मनाई, 100 वर्ष पूरा होता है तो उनको लोग पैसा देते हैं, जय मनाते हैं, फेस्टिवल होता है, 100 वर्ष इस नरक में रह गया किसी कुत्सित देह। तो 100 के बाद वो बेचारा सोचता है कि और शताब्दी आ जाए दूसरी, यही रह जाए, लेकिन ये देह रहेगा नहीं, उसको छोड़ देगा, आत्मा को छोड़ेगा। स्वांत सकृत श्रम अवरुद्ध धन सदेह सदेह कथम भूत पुरुष पुष्णात पुरुष, कैसा जीव है, तो जीव के बारे में बता रहे, सकृच्छ्रम जथा भवति तथा अवरुधानि संचितानि धनानि चेन सह। देह को पोषने के लिए आत्मा इतना इतना काम करता है, सवेरे 4 बजे भोर से लेकर के 10-11 बजे रात तक, या कभी कभी पूरी रात, धन कमाता है, इकट्ठा करता है, और धानी संचितानी धनानी जन सह, बहुत बहुत धन संचय करता है, इकट्ठा करता है, बहुत कृच्छ्र के साथ, सकृच्छ्रम बड़े भारी परिश्रम के साथ, लेकिन यह देह जिस देह के लिए वह ऐसा करता है, सदेह स्वांते स्वस्य आयुषः अन्ते, अपनी आयु का अंत होने पर अवसीदति नश्यति। अच्छा, देह नष्ट हो जाता है, मर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि देह नाशे अपनी दुख समाप्ति रित्या है, देह चला गया तो चलो दुख खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यह देह गिरने से पहले पहले दूसरे देह के लिए बीज बो करके जाता है, बीज बो देगा दूसरे देह के लिए, मतलब इस देह में जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके अनुसार निश्चित हो जाता है कि अब दूसरा देह मिलेगा। या कोई कहे कि भाई अगर देह दुख देने वाला है ठीक है, लेकिन आखिर एक दिन तो ये गिर जाएगा तो दुख बंद हो जाना चाहिए, कहते नहीं, यह कई कई शरीर आगे मिलेगा इसकी व्यवस्था करके जाता है। सृष्टवास्य बीजम अश्य मतलब जीवस्य, जीव के लिए यह दुख का बीज बो करके जाता है, वृक्ष धर्मा, क्योंकि यह वृक्ष धर्मा है, वृक्ष जैसा इसका स्वभाव है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष गिरता है लेकिन कई बीज उत्पन्न कर देता है तो दूसरे वृक्ष हो जाते हैं, उससे चलता रहेगा। तो दुख का वृक्ष बो करके जाएगा, बीज बो करके जाएगा, इसके बाद फिर शरीर लेना है, शरीर लेंगे, उस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर उसके अनुसार दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, इसमें शरीर मिलता रहेगा। तो ये देह जाएगा लेकिन और शरीर की व्यवस्था करके जाएगा, इसलिए बहुत दुखद देह, ऐसे देह में आस्था नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग साधु हो जाते हैं आराम के लिए, घर द्वार में बड़ा झंझट है, चले किसी मठ मंदिर में छाट से खाएंगे पिएंगे, लेकिन यहाँ भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम में वैराग्य क्या आया है। जो देह आसक्ति का मूल है, बंधन का मूल है, दुख देने वाला है, उसी देह को जा करके पोष रहे हो। देह पोषने के लिए वैरागी नहीं हुआ जाता है, देह सुखवाने के लिए वैरागी हुआ जाता है। जो पहले से देह तंदुरुस्त है उसको भी शुष्क करने के लिए, देह को खिलाए पिलाएंगे तो जैसा पहले हुआ था कि अगर ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे पोसेंगे तो ये गुरु ज्ञान भक्ति का उपदेश नहीं करेगा और संसार महांधकूप में फेंक देगा और विषय की कामना बढ़ेगी, भोगों की लालसा बढ़ेगी, इसको बहुत बढ़िया से रखने पर। भगवान बहुत कृपा करते हैं उन भक्तों पर, साधकों पर, जिनको रोग हो जाता है, या जिनका शरीर कुरूप हो जाता है जैसे तैसे, वास्तव में भगवान की दया है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखिए तो ये भगवान की अनुकंपा है, उनका स्नेह है उस भक्त के प्रति, जिससे कि संसार में लोग उसको पूछे ही ना। और नहीं जहां पूछना चालू किए तो ये भजन सजन छोड़ करके बस उनका गुलाम हो जाता है। इस तरह से ये शरीर है। अवरुद्ध धन का अर्थ या तो देह है या जीव है। यहां सिद्धार्थ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि संचितानी धनानी जैन सह देह विशेषणम वा, जीव के लिए जो मरमर करके धन इकट्ठा करता है किसके लिए, देह के लिए, लेकिन वही ससुर देह अंत में गिर के खत्म हो जाता है। साथ ना दी हम बिना भोजपुरी के क्लियर नहीं हो। जिस देह को पोसने के लिए बाप रे बाप क्या क्या खाए, आप जन्म से जोड़िए अब तक कितना भोजन डाले, क्या क्या काम किए, ये किए वो किए। एक बार मैं इस श्लोक को कुछ कहा था, प्रीचिंग में कहीं कहा था, एक आदमी कहा कि आत्मा क्या देह के लिए कह रहा है, देह ही ना देह खातिर कमैले है। मुझे कहा नहीं नहीं, देह नहीं कमा सकता है, देह अगर मर जाता है गिर जाता है तो उसमें कुछ कमाएगा, रखा हुआ जूता नहीं पहन सकता है, वो और क्या कमाएगा। देह में रह कर आत्मा कमा रहा है वास्तव में। अच्छा वो क्यों कमा रहा है, देह को सुखी करने के लिए, लेकिन देह उसका साथ छोड़कर गिर जाएगा, भाग जाएगा। तो जो आत्मा से प्रेम नहीं कर रहा है, इतना मरमर करके बेचारा आत्मा काम किया देह के लिए और देह छोड़ करके भाग जाएगा, तो ऐसे धूर्त देह में क्या आस्था करनी है, इसे क्यों प्रेम करेंगे। जो हमको अंत में धोखा देगा उसको हम आज ही ना धोखा दे दें, हम काहे इसको पोसेंगे, हम क्यों इसमें आ सकते हैं। जीव देह पोसने के लिए नहीं आया है। तो देह है क्या, देह है माटी का धोंधा, पृथ्वी का विकार है। वास्तव में इस देह को पोषने में जितना आदमी का समय जाता है उतना भजन में कहा जाता है। जो लोग भक्त हो गए उनकी बात मैं कह रहा हूँ, भागवत सप्ताह को बाद करके और दिन को देखिए, मुंह धोने में, खाने में, सोने में, नहाने में, शौच होने में रोज रोज कितना समय जाता है, और फिर देह के लिए ही काम कर रहे हैं, वो भी समय उसी के लिए जा रहा है, सोना केवल देह के लिए हो रहा है। तो 24 घंटे में लगभग भक्त बने हुए लोगों का भी 20-22 घंटा केवल देह के लिए जा रहा है, और आत्मा के लिए क्या हो रहा है, आत्मा के लिए वही कुछ जप किए, मंदिर में चले गए, भागवत पढ़े, तो ये आत्मा के लिए हो रहा है। और कुछ लोगों का तो आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है, वे आत्मा राम की सेवा में लगे, कोई आत्मा से मतलब नहीं। आत्मा अधोगति में जा रहा है इसकी चिंता नहीं है, लेकिन घर द्वार देह की पूजा में लगे, ये सीखने की बात है कि यह शरीर दुख देने वाला है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इस पर कि बीजम सृष्टवा, बीज की सृष्टि करके तब ये शरीर गिरता, देह नाशे अपि न दुख समाप्ति ही, अस्य पुरुषस्य देहांतर बीजम कर्म सृष्टवा। इस अर्थ बीजांतर परंपरा रंभणम हेतु रस्य, एक देह प्राप्ति की परंपरा की सृष्टि करके जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इस समय जो कर्म कर रहे मनुष्य शरीर में तो एक देह मिलकर बंद हो जाएगा, नहीं। जैसे एक वृक्ष से हजारों लाखों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरह से इस मनुष्य देह में किए गए कर्मों के कारण आगे बहुत बहुत शरीर मिलेगा, और सब शरीर दुख भोगने के लिए मिलता है। इस तरह की व्यवस्था ये देह करके जाता है। वास्तव में इसमें बेचारा देह का क्या दोष है, सब दोष आत्मा का है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान देने के लिए देह से पृथक करके बात कही जा रही है कि देह दुख की